أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی سیوا میں اپنے پروگرام کو لے کر. پچھلے پروگرام میں ہم شرکت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے کہ شرکت کسے کہتے ہیں، اور شرکت کے کچھ احکام بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. یہاں پر چند ایک حکم اور آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں شرکت کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم مضاربے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. پہلا مسئلہ آج کا شرکت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آخری مسئلے میں بیان کیا تھا کہ اگر مال کو جب جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور جب تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر اس وقت کوئی شرط لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر جتنے شریک ہیں سب ساتھ مل کر سامان خریدیں گے، مال خریدیں گے تجارت کے لیے، یا دونوں مل کر خریدیں گے، یا اکیلے اکیلے خریدیں گے، یا صرف ایک انسان ان میں سے خریدے گا، تو اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی سے متعلق جو ہے وہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ معین نہ کریں کہ سرمایہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کون خرید و فروخت کرے گا، کون سامان خریدے گا، کون بیچے گا تجارت کے سامان کو، تو اگر یہ معین نہیں کرتے ہیں تو پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی اجازت کے بغیر کچھ خریدے اس پیسے سے یا کچھ بیچے، یعنی دوسروں کی بغیر اجازت کے وہ اس سرمایے سے، اس مال سے تجارت نہیں کر سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگ جو آپس میں شریک ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو شریک بنایا ہے اپنا اور مال کو اکٹھا کیا ہے، ایک ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کسی وقت اپنے حصے کو لے کر الگ ہونا چاہتا ہے تو جس وقت وہ چاہے اپنے حصے کو لے سکتا ہے، چاہے جو ہے وہ ایک مدت معین ہو گئی ہو کہ اس مدت تک ہم تجارت کریں گے، پھر بھی بیچ میں اپنے پیسے کو کوئی شریک لے سکتا ہے. اور جو دوسرے شریک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو قبول کر لیں اور اس کے حصے کو دے دیں. لیکن ہاں، اگر وہ اپنے حصے کو بیچ میں مانگ رہا ہے اور اگر اس وقت اس کا حصہ نکال کر دیا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تجارت کو. تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ خود یہ جو حصہ مانگ رہا ہے یہ صبر کرے، یہ انتظار کرے کہ موقع مناسب ہو اور تجارت جو ہے وہ ایک نتیجے تک پہنچ جائے، یہ اپنی مدت تک پہنچ جائے، تب تم کو جو ہے وہ تمہارا حصہ واپس دیا جائے. مثال کے طور پر چند لوگ جو ہیں وہ آپس میں شریک ہوئے ہیں، اور یا دو لوگ شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی تجارت شروع کر دی ہے، مثال کے طور پر پراپرٹی ڈیلنگ کرنے لگے ہیں اور سارا پیسہ جو ہے وہ کاروبار میں لگا دیا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ ایک شریک کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا پیسہ واپس چاہیے، اگر جو ہے وہ دوسرے شرکا جو ہیں وہ اس کے پیسے کو واپس دینے لگیں تو کاروبار میں خلل واقع ہو جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ یہ انتظار کرے. آخری مسئلہ اس پروگرام کا، آخری مسئلہ اس موضوع کا، یعنی شرکت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اگر شریکوں میں سے کوئی ایک شریک مر جائے، مثال کے طور پر پانچ شریک ہیں ایک مر جائے، یا دو شریک ہیں دونوں میں سے ایک مر جائے، یا دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، یا بے ہوش ہو جائے، یا جو ہے وہ بےہودہ انسان اوباش جسے کہتے ہیں، یعنی اب اس کو اپنے مال کو خرچ کرنے کی تمیز نہ رہے، کومے وغیرہ میں چلا جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے، یا اسی طریقے سے حاکم شرع جو ہے وہ اس کو مال خرچ کرنے سے، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنے سے منع کر دے کہ تم اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، تو دوسرے جو شریک ہیں وہ اب مال میں تصرف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کئی شریک تھے، ایک شریک مر گیا ہے، تو جو شریک مر گیا ہے جب تک اس کا حصہ اس مال سے نہ نکل جائے تب تک اس مال سے یہ لوگ تجارت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ شریک نہیں رہا और उसका माल इसमें शामिल है। अब जो इसका माल यहाँ इसमें शामिल है, अगर ये इसी माल के साथ तिजारत करते हैं तो गोया वो शरीक नहीं है, तो इसका माल जो खर्च होगा वो बग़ैर इजाज़त के खर्च होगा और बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल होगा उसका माल, पैसा जो भी है, लिहाजा जो है वो इन लोगों के लिए इजाज़त नहीं है। या इसी तरीके से दीवाना हो जाए, बेहोश हो जाए, कोमे में चला जाए, या अक्ल को खो बैठे, या हकीम शरा उसे मना कर दे, तो किसी भी सूरत में अब वो जो है यानी ख़ुद अपने माल को खर्च नहीं कर सकता, तो दूसरों को क्या इजाज़त देगा कि उसके माल में खर्च करे, गोया इजाज़त नहीं है और उसका माल इसमें शामिल है। लिहाजा अगर ये तिजारत करते हैं तो बग़ैर इजाज़त के जो है उसका पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए ये जो है उस माल को खर्च नहीं कर सकते जब तक कि उसमें से उसका हिस्सा ना निकाल दें। दोस्तों, ये शिरकत के अहकाम यहीं पर तमाम हो गए हैं। अब हम एक नए विषय के बारे में आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं और वो है मुजारबा। मुजारबा किसे कहते हैं? मुजारबा ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ माल दे, कुछ पैसा दे और उससे ये तय करे कि तुम इस पैसे से काम करो और जो मुनाफा होगा, जो नफ़ा होगा, जो प्रॉफिट हो, जो फ़ायदा होगा, उसको जो है हम आपस में तकसीम कर लेंगे, इसको जो है वो मुजारबा कहते हैं। और जिस इंसान को काम करने के लिए पैसा दिया जाता है उसको शरई इस्तेलाह में आमिल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले मुजारबे की शराइत आपके सामने बयान करेंगे। मुजारबे की शराइत जो है वो मुख्तलिफ हैं। क्यों? इसलिए कि एक इंसान पैसे दे रहा है, दूसरा इंसान काम कर रहा है, फिर जो लिहाजा जो है जो पैसा दे रहा है उसके भी कुछ शराइत हैं, जो काम कर रहा है उसके भी शराइत हैं, इसी तरीके से जो माल दिया जा रहा है उसके भी शराइत हैं, फिर जो फ़ायदा होगा उसके भी कुछ शराइत हैं। सब के शराइत हैं हम अलग अलग आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले हम शराइत बयान करते हैं माल के। सबसे पहले आपके सामने हम वो शराइत बयान करते हैं कि जिनका ताल्लुक़ उस इंसान से है जो अपने माल को दे रहा है। उसके लिए चार शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि बालिग होना चाहिए, लिहाजा नाबालिग बच्चा अगर कोई पैसा किसी को देता है कि जाओ तुम इस पैसे से मेरे लिए काम करो और जो फ़ायदा होगा उसको आपस में तकसीम कर लेंगे, जो मुनाफा होगा उसको तकसीम कर लेंगे, तो ये सही नहीं है और किसी को उससे पैसा नहीं लेना चाहिए काम करने के लिए। दूसरे आकिल हो, यानी दीवाना या सफ़ी, जिसे हमने बताया था, यानी अपने माल को खर्च करने की तमीज़ नहीं है जिसको, ऐसा इंसान ना हो। तीसरे ये कि इख्तियार रखता हो, मोहताज या ग़ुलाम ना हो। इख्तियार के सिलसिले में पहले भी हमने दूसरी जगहों पर बयान किया है। चौथे ये कि उसको जो है हाकिम शरा की तरफ से अपने माल को खर्च करने के लिए रोका ना गया हो, यानी वो अपने माल को खर्च कर सकता हो। अब जो अपने माल को खर्च नहीं कर सकते वो हमने आपके सामने पहले भी बयान किया था, नाबालिग बच्चा है, मजनून है, सफ़ी है, मुफलिस है, इन लोगों में से ना हो, यानी अपने माल को खर्च करने का अधिकार रखता हो। ये शराइत हैं साहिब माल के, यानी जो पैसा देना चाह रहा है। अब हम शराइत बयान करेंगे उस इंसान के जो काम करेगा, यानी जिसको पैसा दिया जा रहा है और काम वो करेगा, यानी पैसा हमारा, काम तुम करो, फ़ायदा जो है जो मुनाफा होगा वो आपस में बांटेंगे। तो हमने पैसे देने वाले की शराइत बयान की, अब शराइत बयान करेंगे जो इंसान काम करेगा उसके। उसके लिए भी तीन शर्तें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पैसे देने वाले के लिए है, यानी बालिग होना चाहिए, यानी किसी गैर बालिग नाबालिग बच्चे को पैसा ना दिया जाए काम करने के लिए। आकिल होना चाहिए, यानी किसी दीवाने या मजनून को काम करने के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से इख्तियार होना चाहिए, यानी किसी ग़ुलाम को जो है वो अगर पैसा दे दें काम करने के लिए, तिजारत करने के लिए, कि हमारा पैसा है तुम तिजारत करो, नफ़े को बांट लेंगे, और मालूम हुआ कि जिस वक्त में तिजारत करना है उस वक्त में जो है वो उसका आका जो मालिक है ग़ुलाम का वो इजाज़त ही नहीं देता है, लिहाजा इसके पास इख्तियार नहीं है और इसको भी नहीं दिया जा सकता। चौथे ये कि ऐसे इंसान को पैसा दिया जाए जो तिजारत करने की ताकत रखता हो। ऐसे इंसान को पैसा दिया जाए जो तिजारत पर कुदरत रखता हो, लेकिन जो इंसान कुदरत ही ना रखता हो, जो इंसान ताकत ना रखता हो, उसको नहीं दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान तिजारत नहीं कर सकता तो साहिब कुदरत नहीं है, या कोई इंसान तिजारत करना ही नहीं जानता, ये भी साहिब कुदरत नहीं है, और इनको पैसा नहीं देना चाहिए। अब हम बयान करेंगे वो शराइत जो माल से मुताल्लिक है, यानी खुद वो माल जो दिया जा रहा है उसके क्या शराइत हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि माल जो है वो ऐन माल होना चाहिए, यानी खुद पैसा मौजूद हो, या जो माल दिया जा रहा है वो माल मौजूद हो। ये ना कहें कि मेरा जो फलां के ऊपर कर्ज है वो मैंने आपको दे दिया कि आप जाइए उससे काम कीजिए, या खुद मेरा जो आपके ऊपर कर्ज है उस पर जो उससे जो आप काम कर रहे हैं या उससे काम कीजिए और मुनाफा बांट लेते हैं। हाँ, अगर किसी पर हमारा कर्ज है पहले उससे कर्ज को वापस लें, उसके बाद उसको मुजारबे के लिए काम करने के लिए दे सकते हैं, या इसी तरीके से ये कहें कि मैं जो काम करता हूँ, मैंने जो अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, इसका जो फ़ायदा होगा उस फायदे से आप काम कीजिए और फिर उसको हम उसमें जो मुनाफा होगा वो आपस में बांट लेंगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि उस पर जो प्रॉफिट होगा या उसको जो कर्ज दे रखा है, ये नहीं, बल्कि माल मौजूद हो और काम करने वाले के हवाले करें कि ये माल है, ये पैसा है और इससे आप काम कीजिए। दूसरी शर्त ये है कि जो काम करने के लिए माल दिया जा रहा है वो जो है वो पैसे की शक्ल में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है वो कोई सामान ना हो। मिसाल के तौर पर हम गेहूं दे दें, कहे भाई ये गेहूं है, इस गेहूं से आप काम कीजिए और इसका जो फ़ायदा और मुनाफा होगा उसको आपस में तकसीम कर लेंगे। उसकी दूसरी किस्म है, मिसाल के तौर पर कोई अपने गेहूं को बेचना चाहता है, खुद नहीं बेचता, किसी के हवाले कर देता है, कहा ये 10 क्विंटल गेहूँ है, इनको आप बेच दीजिए। इसको वकालत कहते हैं, जो हमने पहले बैन किया, इसको मुजारबा नहीं कहा जा सकता। मुजारबा जो है वो फ़कत पैसे पर है, यानी पैसा दीजिए, काम कराइए और जो प्रॉफिट होगा, जो नफ़ा होगा, उसको आपस में तकसीम कीजिए। तीसरी शर्त ये है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो मुअय्यन होना चाहिए, यानी मुअय्यन हो कि कितना पैसा है, और ये भी मुअय्यन होना चाहिए कि कौन सा पैसा है, रुपया है, डॉलर है, रियाल है, यूरो है, कुछ भी है, कितने डॉलर हैं, क्या हैं, कितने 1,000 रुपये हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो मुअय्यन होनी चाहिए। या पुराने ज़माने में जो है वो इस एतबार से मुअय्यन होना ज़रूरी था, चूँकि कुछ सिक्के जो हैं वो सोने के होते थे, कुछ चांदी के होते थे, तो ये मुअय्यन होना चाहिए कि दिरहम है या दीनार है, इस तरह की चीज़ें। और चौथी शर्त यह है कि जो पैसा दिया जा रहा है उसके सिफात और उसकी मकदार मालूम होनी चाहिए। सिफात और मकदार मालूम होने से क्या मुराद है? सिफात और मकदार मालूम होने से मुराद ये है, जैसा कि हमें अभी भी बयान किया, सोने के हैं, चांदी के सिक्के हैं, या मकदार मालूम होना चाहिए, 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, डॉलर हैं, या इसी तरीके से कोई और सा पैसा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो माल के लिए ज़रूरी है कि मुअय्यन होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में और मुफस्सल मुजारबे के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।